ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेपाली कांग्रेस के बहादुर सिंह लामा हुए नियुक्त। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक का जल्द ही निराकरण करने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। आग के धुएं से दम घुटने के कारण जुमला में प्रसूता सहित दो लोगों की हुई मौत और गजा के खान यूनिस क्षेत्र पर इसराइल के हमले में कम से कम 84 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में डेंगू रोग पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए जरूरी सार्वजनिक महत्व का प्रस्ताव पेश हुआ। बैठक में सांसद कुसुम देवी थापा, सपना राजभंडारी, सीता मिजार और लीला देवी बोखिम लिंबू के समर्थन में सांसद प्रतिमा गौतम ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़ने से समाज में एक तरह का त्रास फैल चुका है। उन्होंने आगे कहा कि इस पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर विचार विमर्श के दौरान उठे सवालों पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि डेंगू नियंत्रण पर काम करने के उद्देश्य से एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के नेतृत्व में कार्यदल गठन कर सभी प्रदेशों और स्थानीय तहों में द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालित की गई है। प्रतिनिधि सभा की बैठक ने सुरक्षित कारोबार पहला संशोधन विधेयक 2081 पर विमर्श करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। बैठक में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि कर्ज में सहज पहुंच बढ़ाने और देश के अर्थतंत्र को चलायमान बनाकर सुरक्षित आर्थिक कारोबार विस्तार करने के लिए विधेयक में संशोधन जरूरी है। इससे पूर्व बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि संसद में सांसद ने ही बिचौलियों के घूस दिए होने की संबंधी मामले की तत्काल छानबीन के निर्देश उन्होंने दिए हैं। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि इस साल मॉनसून शुरू होने के बाद प्राकृतिक आपदाओं में अब तक 130 लोगों की मौत हुई है और 48 लोग अभी भी लापता है। बाढ़ व भूस्खलन के कारण 4000 से अधिक परिवार विस्थापित हुए हैं और 1059 परिवारों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 13 गते रविवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दल के नेता बहादुर सिंह लामा तामाङ नियुक्त हुए हैं। बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री पद पर लामा को आज नियुक्त किया है। कांग्रेस और एमाले के बीच हुई सत्ता साझेदारी की सहमति के अनुसार बागमती प्रदेश में कांग्रेस संसदीय दल के नेता लामा के नेतृत्व में नई सरकार गठन के लिए प्रदेश प्रमुख शर्मा समक्ष आज दोपहर दावा पेश किया गया था। इसी बीच मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कल बुधवार सुबह 11 बजे के लिए तय किया गया है। ये जानकारी प्रदेश प्रमुख के कार्यालय ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संक्रमणकालीन न्याय संबंधी टीआरसी विधेयक पर सहमति जुटाने के लिए गठित कार्यदल से विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने कार्यदल के से ब्रीफिंग ली और इस विषय को जल्द ही अंतिम रूप देने की बात कही। विचार विमर्श के बाद कार्यदल के सदस्य महेश बरतौला ने कहा कि कार्यदल विधेयक पर सहमति बनाने के लिए आज से काम शुरू करेगा और जल्द ही किसी समझौते पर पहुंचेगा। बीते आषाढ़ 17 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान टीआरसी विधेयक पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय सहजीकरण कार्यदल का गठन किया गया था। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि निर्माण व्यवसायियों के जायज मांगों के प्रति सरकार सकारात्मक है। आज मंत्रालय में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह सहित की टोली से मुलाकात में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि निर्माण व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने की सरकार कोशिश करेगी। गृहमंत्री रमेश लेखक ने अध्यागमन संबंधी आईन कानून बनाने में सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई है। आज अध्यागमन विभाग के निरीक्षण के बाद गृहमंत्री लेखक ने 1 महीने के भीतर आईन नियम कार्यविधि और नियमावली गृह मंत्रालय में प्रस्तुत करने का निर्देश किया। उन्होंने दार्चुला के तिंकर और मुस्तांग के कोरला में अध्यागमन कार्यालय स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र और सभ्य प्रेस के पक्ष में है। राष्ट्रीय सभा की विधायन प्रबंधन समिति की आज हुई बैठक में मंत्री गुरुंग ने कहा कि मीडिया काउंसिल को स्वायत्त संस्था बनाने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। मंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार द्वारा पेश किया गया मीडिया काउंसिल विधेयक संविधान द्वारा प्रदत्त प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देगा। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने मौसम की जानकारी प्रभावी ढंग से प्रसारित करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। आज जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का निरीक्षण करते हुए मंत्री खड़का ने लोगों की जान की सुरक्षा को प्राथमिकता में देते हुए सेवाएं देने का आग्रह किया। आज मंत्रालय में इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन नेपाल के साथ बैठक में मंत्री खड़का ने निजी क्षेत्र से जल्द बिजली उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया। लुम्बिनी प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य कल बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल बुधवार को सुबह 8:30 बुटवल स्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालय में निर्धारित की गई है। ये जानकारी प्रदेश प्रमुख कार्यालय के प्रवक्ता धर्मा अर्याल बिलवासी ने दी। सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा का विशेष अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। विशेष अधिवेशन की पहली बैठक में सभामुख भीम बहादुर भंडारी ने प्रदेश प्रमुख कार्यालय से प्राप्त विशेष अधिवेशन आह्वान संबंधी पत्र पढ़कर सुनाया था। इसी तरह सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार मंत्री परिषद बैठक ने मंत्रालय की संख्या घटाने का निर्णय किया है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता अकल रावल ने श्रावण 6 गते हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने मंत्रालय की संख्या 10 से घटाकर 7 कायम करने का निर्णय किया है, इस बात की जानकारी दी। आग के धुएं से दम घुटने से जुमला में 2 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में पातारासी गांवपालिका वार्ड नंबर 4 की 11 दिन की प्रसूता 22 वर्षीय माया लक्ष्मी महतारा और उनकी बहन 19 वर्षीय जुनमाया रोकाया शामिल है। सरकार ने देश भर में एम्बुलेंस के रंग, साइरन और अन्य सिग्नल में एकरूपता लाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने प्रादेशिक एम्बुलेंस प्रबंधन समिति और जिला एम्बुलेंस प्रबंधन समिति को परिपत्र जारी किया है। राष्ट्रीय एम्बुलेंस निर्देशिका 2078 के अनुसार मापदंडों में एकरूपता की कमी के कारण मंत्रालय ने प्रादेशिक और जिला स्तरीय एम्बुलेंस प्रबंधन समितियों को मापदंड का पालन करने का निर्देश किया। चितवन सिमलताल में भूस्खलन के साथ बहकर त्रिशुली में गिरे 2 बसें और यात्रियों का आज 12वें दिन भी तलाश जारी है। ये जानकारी प्रमुख जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। गजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली हमले में कम से कम 84 लोग मारे गए हैं। ऐसा तब हुआ है जब इजरायल ने फलिस्तीनी चरमपंथियों के खिलाफ एक ऑपरेशन से पहले गजा के रिहायशी इलाके को खाली करने का आदेश दिया था। इजरायली सेना ने सोमवार सुबह बताया कि खान यूनिस के पूर्वी इलाकों से महत्वपूर्ण आतंकी गतिविधियां और रॉकेट से हमले हुए थे। उस क्षेत्र में रह रहे लोगों को अलमवासी रिहायशी इलाके में जाने के लिए कहा गया था। इजरायली सेना ने बताया है कि इसके बाद क्षेत्र में भारी बमबारी की गई जिससे आतंकियों और उनके बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि इजरायल के इस आदेश के बाद खान यूनिस से 2 किलोमीटर पूर्व स्थित मान और बानी सुहैला कस्बे में स्थित उनके क्लिनिक में सेवाएं ठप हो गई हैं। वहीं इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनका आदेश अस्पतालों पर नहीं लागू होता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर नेपाली कांग्रेस के बहादुर सिंह लामा हुए नियुक्त। संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक का जल्द ही निराकरण करने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। आग के धुएं से दम घुटने के कारण जुमला में प्रसूता सहित दो लोगों की हुई मौत और गजा के खान यूनिस क्षेत्र पर इसराइल के हमले में कम से कम 84 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।